हमारी सभा पति को उदय करेंगे और इसमें दो तीन लोगों को जो हमने कठोर परिश्रम किया है उनको
संकलित है और अनेक लोग समर्थ लोग पुत्र पात्र लोग भक्त लोग भगवत चरणारविंद समर्पित जन उसके माध्यम से आधारविंद की अति हर्ष वही पीड़ाओं के समाज स्वादन दिव्य सुयोग राशि सौभाग्य राशि श्रम करते हैं। कुछ शब्दों में उसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। मुझे गुरुदेव की कृपा से योग्यता उतनी न होने पर भी पांडित्य उतना न होने पर भी और सक्षमता भी न होने पर भी मुझे अनेक विश्वविद्यालयों में बड़ौदा विश्वविद्यालय में दरभंगा विश्वविद्यालय में और काशी विश्वविद्यालय में श्री गोस्वामी पाद के श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के संदर्भ में प्रवचन करने का और कई सेमिनारों में उनके साहित्य पर अपने भाव अभिव्यक्त करने का शुरू प्राप्त हो रहा है। उसका मुझे एक बड़ा लाभ ये मिला कि प्राय कालिदास भवभूति की माग इंद्रनाथ श्रीहर्ष बड़े बड़े संस्कृत के उद्भट महाकवि हैं उनके विषय में अनेक लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए चर्चा की तो विषय की तालिका में न होने पर भी मैंने कहा कि इन प्राचीन कवियों के स्थान पर मैं एक वैष्णव विश्व में उनका भौतिक रूप में जो भाव है लेकिन समस्त श्रद्धालुओं के प्राणों में तो नित्य आविर्भाव है। और ये ग्रंथों का मुख्य छोटा सा सूत्र है भागवत सवेन भजताम रस काम थे किसी को भी उत्सव कहते हैं रस को और रस है परमात्मा रसो वैष्णव भगवान भी गीता में कहते हैं रस है मत्सु गौन देय शब्दम खे पौषम ऋषि मैं तीन रूपों में सर्वत्र प्रकट हूँ स्थित हूँ और अपनी कृपा का परमेश्वर करता रहता हूँ। जिनके हृदय में थोड़ी करुणा है जिनके हृदय द्रवित है उस दिव्य करुणा जिनका स्वभाव बन गई है उसको जिनका स्वभाव बन गई है स्वभाव में करुणा नहीं है तो न दर्शन का उद्भव है न काव्य का उद्भाव है न साहित्य संहिता का उदय है और अंतर हृदय के भीतर एक दिव्याति दिव्य भाव का समागम और संगम संभव है। तो मैंने कहा मैं तो किस कालिदास पर भवभूति पर बाणभट्ट पर या श्रीहर्ष पर न कह करके सभापति जी से विशेष अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं श्री गोस्वामी के काव्य तंत्र पर कुछ अपने विचार अभिव्यक्त करूँ। और वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब मैंने उज्जवल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य अन्य सब ग्रंथों का आश्रय लेकर के जब कुछ निवेदन करने का अपना प्रयास किया तो उपरांत सारा सभा मंडित द्रवित हो गया और मुझे विशेष रूप से एक प्रमाण मंत्र प्रदान हुआ कि आपने इस हिंदी साहित्य विश्व को एक अलौकिक कवि से अवगत कराया। उनको श्रीमद्र गोस्वामी का हरिदास जी की कुटी में सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथाचार्य और दूसरे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान स्वयं किसी की उपमा तुलना उचित नहीं है, लेकिन भाव की असमुद्ध सीमा में रहते हुए भी महाप्रभु महान नैयायक विद्वान थे। न्याय दर्शन नास्तिक दर्शन है, नव्य न्याय प्राच्य न्याय वैशेषिक और सांख्य मूलतः नास्तिक दर्शन है, लेकिन तथापि श्रीमद् भागवत में महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम जो घोषित किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सारे नास्तिक दर्शनों को अति आस्तिक दर्शन के रूप में प्रतिपादन कर दिया गया। ये भागवत का वैशिष्ट्य है और वहाँ जीव और ब्रह्म की समीक्षा और मीमांसा द्वैतात्वैत विशिष्टात्वैत श्रद्धात्वैत द्वैतात्वैत प्रभृति सबको अचिंत्य भेदाभेद की पराग विद्या सार सर्वज्ञता संयुक्त विश्लेषण के साथ प्रतिपादन करने का जो उद्घोष हुआ श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा समन्वयात्मक सामंजस्य समीकरण के रूप में पंडित समुदाय के लिए सर्वदा वंद्य है, वेद्य है और निर्वेद की उपलब्धि कराने वाला है। निर्वेद कहते हैं परम शांति, क्योंकि बाकी दो छेद विच्छेद इन सब के साथ में वेद तत्वों का विवेचन लोग करते हैं, उद्वेग उत्पन्न होता है, आवेग पैदा होता है, संवेग पैदा होता है, लेकिन वेदांत कहता है कि निर्वेद उत्पन्न हो, लेकिन गौड़ीय दर्शन कहते हैं कि निर्वेद भी पराभूति से संपन्न नहीं है, उसमें जब तक वेद सार सर्वत्र कृष्ण के दिव्य परात्म रस के उन्मेष का अवकाश उपलब्ध न हो। रूप गोस्वामी पाद का एक छोटा सा संदर्भ मैं आपको सुनाता हूँ। कल महाप्रभु की कृपा था, हिंदी के संस्कृत के बहुत बड़े कहना चाहिए सर्वोत्कृष्ट श्रीहर्ष बहुत बड़े विद्वान जिनका रस गंगाधर और श्रीहर्ष दो महाकाव्य पूरे आचार्यों में भी नहीं पढ़ाया जाता, केवल चार अध्याय पढ़ाए जाते हैं। एक यावनी कन्या से थोड़ा प्रणयात्मक संबंध हो जाने के उपरांत काशी के विद्वानों ने उनको लांग गला कर पीने का प्रांगण दिया, तो गंगा के किनारे बैठ करके प्राण त्याग करने का संकल्प किया और जब वो गंगा की धारा में कूदने लगे तो स्वयं गंगा प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, पंडित राज आपका इतना महारह महामूल्य जीवन इन पंडितों के कर्मकांडी पंडितों के स्वतंत्र पंडित तो है लेकिन पूर्वीमांसा के हैं, उत्तर मीमांसा के ज्ञाता तो आज भी बहुत कम है। उत्तर मीमांसा में भी अब सब लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन पंडित राज से गंगा जी ने कहा कि तुम काहे को पंडितों के चक्कर में पड़े हो, जगन्नाथ जी चले जाओ नीलाचल में, स्वयं श्री राधा गोविंद के स्तंभ तक श्रीमन महाप्रभु प्रारूपभूत हुए हैं और वहीं तुम्हें गर्भ स्तंभ के कारणभूत बाहु मुद्रा में जिनके नेत्रों से अनवरत अश्रधारा प्लावित होती रहती है उनसे इसका क्या उपयुक्त प्रायश्चित कर पश्चाताप हो सकता है, परिहार कैसे हो सकता है और जीवन का परिष्कार कैसे हो सकता है, उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर गंगा श्रीहर उनको श्री गंगा जी ने कहा। एक पूरी पहुंचे जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो कई उत्तरा पर्वतों की दृष्टियों से मिला रहे थे कि श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप ऊपरी दृष्टि से तो उतना सुंदर नहीं है और श्री महाप्रभु की ओर देखते थे तो मालूम जगन्नाथ के श्री विग्रह से संपूर्ण अथवा दूसरे शब्दों में हम प्रतिवासी लोग कहें गौरांगे मृदिमास मिते मधुरिमा नेत्रां चले द्राघिमा वक्षो ये गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाकरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेष्टु हे गोचर गौरा लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्तिः काविमहद्भुता वरतनुर्लीला गतिश्चाद्भुता द्रैभङ्गी पुनराद्भुताद्भुत्तमं यस्यस्मितं चाद्भुतं सा राधाद्भुतमूर्तिरद्भुतकथं दास्यं कदा दास्यति। पूर्व सौंदर्य का पूर्व रस का भगवान ने कहा रस के रूप में मैं सबके भीतर हूं, रस यमस्य सौंदेय शब्दम थे पौरुषम निषु सबके भीतर से रस के रूप में आकाश में शब्द के रूप से और प्रत्येक प्राणी के भीतर पौरुष के रूप से मैं उपस्थित हूं। इधर उधर की उपासनाओं से देवी देवताओं को यंत्र तंत्र मंत्र आदिकों के द्वारा अनंत रिद्धि सिद्धियों को प्रसन्न करने में अनवरत अभिरत रह करके अनावश्यक समय नष्ट कर रहे हो, अपने भीतर ही बैठे हुए इन तीनों को यदि सिद्ध कर लो उनका परिपाक हो जाए तुम परिपक्व हो जाओ तो जहाँ भी बैठोगे अपने ही अंतकरण में ईश्वर सर्वभूतानां हृदये चेतन तिष्ठति अंतकरण में बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षारत कृष्ण का साक्षात करके असमूर्थ रस के आस्वादन का तुम्हें परम संयोग संयोग सहज रूप में सुलभ हो जाए। बहुत पड़ता थोड़ी देर में बात समझ लेता हूँ। पंडित राज खड़े थे महापंडित और उसका क्या उदाहरण हो गए श्रीहर्ष संस्कृत का सबसे कृष्ण उत्तर महाकाव्य है तो जब दर्शन दर्शक हो गए महाप्रभु थोड़ी चेतना में आए और पंडित राज पानी पत्थर खड़े थे महाप्रभु ने मुस्कुरा कर कहा पंडित राज घबराएंगे तो मुझे तो जानते नहीं है परिचय नहीं है मैंने तो केवल गंगा जी ने कहा प्रेरणा से आया हूँ और पंडित राज में जानता हूँ किसने तुम्हें भेजा है और किस संकल्प से तुम्हारा शुभागमन हुआ है। मैं आपके प्रश्न का एक शब्द में उत्तर दिए देता हूँ तो बात यह है कि उस बात को समझने के लिए पांडित्य की नहीं, आप काव्य के कितने भी आपका रसगंगाथ है, रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, जबकि मुंबट और विश्वनाथ केवल कथात्मकम सत्यम काव्यम कहकर के परिवर्षण करते हैं। इन्होंने परिभाषा बदली, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इसके अर्थ बहुत है। और बहुत से लक्षण ग्रंथ हैं, बाबा लक्षण ग्रंथ भी अपूर्व है, प्राकृत होने पर भी अद्वितीय काव्य प्रेक्षाओं का, उपमाओं का, विभावनाओं का, प्रस्तावनाओं का, विश्लेष वक्तोक्तियों का समुद्र है तुम्हारा काव्य। इतने मूल्यवान शरीर को तुम कुछ पंडितों के कहने से अगर नष्ट कर देना चाहते हो, ये भगवान का अपमान है। तुमको कुछ और करने के लिए भी संसार में भेजा गया है, और मैं तुम्हें प्रायश्चित की पश्चाताप की एक बहुत सहज सरल बात बता देता हूं कि जितने पाप पराक्रमी से पराक्रमी पुरुष पूर्ण बल लगा करके, विक्रम लगा करके कर नहीं सकता है, जितने पापों को एक बार कहे हुए कृष्ण नाम मिटा देता है, एक सूर्य एक ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ऐसे कितने ही सूर्य हैं, अर्जुन को लेकर के जब परद्योग में भगवान गए ब्राह्मण पुत्र को लाने के लिए, तो भगवान के हाथ का सुदर्शन चक्र एक मोमबत्ती के समान चमक रहा था। वो संपूर्ण परमेष्ठी मंडल श्री कृष्ण नाम के अक्षरों के मध्य में समाया हुआ है, लेकिन श्रद्धा के साथ में श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयदेन्द्रिय। और इसका भाष्य श्रीमद गोस्वामी पाद ने किया है, आदम श्रद्धा तदो साधु संगोथ भजन क्रिया तदो नर्थ निवृत्ति सतो निष्ठा रुचिस्त तथा शक्तिस्तो भाव तत् प्रेम अभ्युगति। प्रेम के परतत्व तक पहुँचने के लिए श्रद्धावान होना जरूरी है, और श्रद्धा कोई गुरु नहीं दे सकता, श्रद्धा कोई संत भी नहीं दे सकता, श्रद्धा कोई साधना से या देवता से भी प्राप्त नहीं होती। निर्विकल्प और अविज्ञात समाधि में अनवरत सिद्ध होकर के रहने वाले भी उपयुक्त रूप में और उचित रूप में श्रद्धा की उपलब्धि नहीं कर सकते। श्रद्धा प्राप्त करने का स्थान भी एक है, पात्र भी एक है, काल भी एक है, और वो है माता का गर्भ। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपको तो नमन जो किया जाए, प्रणाम किया जाए, वो नमन आपको नहीं है, आपकी माता को है, जिसने आपके संस्कार में श्रद्धा के अमृत का संचार किया है। और धन्यवाद उन गुरु को दिया जा सकता है जिन्होंने माली की तरह उस श्रद्धा का संपोषण करके उसे फलाद्य वृक्ष की तरह से पल्लवित और पुष्पित करके श्री वृंदावन धाम की यमुना कुलीन कूल में पधार करके उसके परिपक्व फलों के निश्चित रस के आस्वादन करने का सौभाग्य प्रदान किया है। जीवन की एक अनिर्वचनीय श्रद्धा एक पैशन नहीं है, इट्स नॉट इमोशन, सेंटिमेंट नहीं, इट्स नॉट ए थिंकिंग थॉट, इट इज डिवाइनली ग्रेस्ड एंड प्लेस फॉर इट ऑन द मदर। माता के गर्भ में किसी समय इसकी सब इसका संस्कार बीज आरोपित हुआ, जो जन्म लेने के बाद किसी, क्योंकि दो चीजें जरूरत है, करुणा, लेकिन संसार में करुणा नहीं, पीड़ा होती है, करुणा होना तो बड़ी कृपा का फल है, पीड़ा होती है। महाकवि शैली कहा करते हैं हमारे जीवन के मधुरतम संगीत वही है जहाँ जीवन की अदृश्यतम करुणा का प्रवाह है। करुणा स्वभावभूत होती है और स्वभाव पुष्ट जो नाथ कालीनाथ कह रहा है भगवान के सामने। अस्तु आप कृष्ण कृष्ण कहिए और इन सब पंडितों की बात को छोड़ करके आपके ये तो छोटा सा पाप है और पाप भी नहीं है, जीवन की अनिवार्यता है। जब हम अध्यात्म के परिवेश में आते हैं, रियल स्पिरिचुअलिटी जब हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तब हम पर्सन नहीं रहते, एक पर्सनैलिटी हो जाते हैं। और पर्सनैलिटी की कोई कास्ट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिकार नहीं है, किसी प्रतिशोध की अपेक्षा नहीं है, वो किसी की अपेक्षा अपेक्षा का प्राप्त नहीं है। उसका एक ही सिद्धांत है अनिच्छा, अनिच्छकी। अध्यात्म विद्या की पराभूति अनिच्छकी जिनके अंतकरण में समुदित होती है, उनके हृदय में राधा माधव के भावों का एक उत्स स्वयं उत्प्लावित होता है, जिसमें वह भी अभिषिक्त होता है और उसके चारों तरफ का क्षेत्र भी अभिषिंचित होता है और वह जीवन में उन भावों के रस का आस्वादन भी करता है, अन्यों को आस्वादन का पात्र भी बनाता है, स्वयं भी धन्य होता है, दूसरे भी कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए तो श्री हर्ष से श्रीमद महाप्रभु महाप्रभु ने कहा श्रीमद रूप गोस्वामी से कितने श्लोक हरिदास जी को सुनाए, सब चैतन्य चरितामृत के पढ़ने वाले विद्वान लोग हैं, हम ब्रजवासी लोग तो विद्वान नहीं कमार कहे जाते हैं लोकल से। श्री गोस्वामी पाद में एकांक आम से महाप्रभु ने कहा नाम की महिमा तो सुनाओ ना, हरिदास जी से कहा, अद्वैताचार्य से कहा, अन्य उपस्थित संपूर्ण अन्य विद्वानों से कहा, बहुत नाम की महिमा लिखी गई है लेकिन रूप की तो आप सुनो। और ऐसा श्लोक तो सारे वर्णमय में दूसरा नहीं है, तुंडे तांडवनी रति विदंते तुंडावली लभये कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्प्रियं चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियच्छिरमृते हि कृष्णे इति वर्णत्वे। क्या विद्वानों का अहंकार है श्री परशुराम गोस्वामी पाद में इतना बड़ा, जब इधर धुमाधव लिखा स्वयं सत्यभामा जी प्रकट हो गए तो पक्षपात क्यों करते हो? यदि वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा है तो द्वारिका के ऐश्वर्य मंडल की अधिष्ठात्री मैं सत्यभामा हूँ, पृथ्वी का अवतार है, चंद्रावली जी की भी एक किरण इनमें अभिनेश है, दक्षिणा नायिका श्री राधा रानी है, इसलिए सत्यभामा जी का स्वरूप भी श्री राधा रानी का, राधा रानी जी की एक किरण इनमें व्याप्त है और रुक्मणी जी का दक्षिणा भाव है, उनका दामा भाव है, लेकिन श्रीमद महाप्रभु की द्वारा और श्री गोस्वामी पाद के द्वारा उनकी कृपा से विरुद्ध माधव के समय स्वयं श्री सत्य भावना जी प्रकट हुई। बोले मेरी अपेक्षा तुमने किया नहीं है, इस ग्रंथ के दुर्भाग कर वृद्ध माधव की नायिका श्री रुक्मणी जी रहेगी और उस ललित माधव की नायिका मैं रहूंगी। इस प्रकार उसका विभाजन किया और वृद्ध माधव और ललित माधव दक्षिण भाग और बामा भाग, इन दोनों के विशेष प्रकार के श्री कृष्ण के अंतरंग भागवत का समन्वयात्मक चिंतन करने का, आस्वादन करने का सौभाग्य गौड़ीय वैष्णवों को प्राप्त है। जीव गोस्वामी और ब्रह्म संप्रदाय के श्री बिल पृथक नाथ गोस्वामी दोनों बराबर के विद्वान हैं, उन्हें वो वैशी का अवतार कहते हैं। लेकिन जब कमर बैठते थे, उन्होंने विद्वत रसमंडन की रचना की, इन्होंने सर्व संभावनी की रक्षा रचना की, श्रृंगार रसमंडन और माधव माधव महोत्सव, राधा कृष्ण की लीला का मेरा स्वास्थ्य और शरीर थोड़ा उतना संतुलित नहीं है, कुछ कुछ विस्मृति भी होती है, परिश्रांति भी होती है, मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। तो इन सब ग्रंथों का अवलोकन, आलोचन, विलोकन, इन सब का स्वाध्याय किया जाए तो श्रोता की अपेक्षा ही नहीं है, मंच की अपेक्षा ही नहीं है, मंचन की अपेक्षा भी नहीं है, आत्मविभोर होकर के सब ओर से अपनी अंतर्वृत्ति को बटोर करके, विभोर होकर के सब ओर से समय करके, जीवन के कोर कोर में रस की प्लावित मंदाग्नि में अवगाहन करके, जन्मांतरों के तापों ताप इन सब से मुक्ति प्राप्त करके, आनंद की अचिंत्य साधना का जीव सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। और इस सौभाग्य के प्रदाता श्रीमती रूप गोस्वामी पाद है। इन्हीं शब्द नीराजनों के साथ में मैं कोटि कोटि नमन करते हैं।
के लिए कह दीजिए, कल आप
आइए। पांच बजे श्रीमद् महाप्रभु के अन्यतम परिकर श्री रूप गोस्वामी के बारे में उन्होंने अपने उद्बोधन में
ये महाराज जी के लिए
बताया। महाप्रभु के आदेश से आप लोग स्वयं चैतन्य चट्टामृत में है, एक बार कृष्ण नाम करो, जीवे साधनाई तो पाप। एक बार कृष्ण नाम लेने से जीव उतने पाप भी नहीं कर पाता, अपना प्रायश्चित करने के लिए जीव के पास कृष्ण नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों के मध्य इस मंच पर आसीन है अपने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वान, जिनका की इस सेवा कुंज में ही और जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जमुना तीर का दर्शन किया था, उस दिव्य स्थान के समीप ही जिनका स्थान है, ऐसे प्रकांड विद्वान जो कि यहाँ पर अपने जो गौड़िया वैष्णव शास्त्र हैं उन ग्रंथों का भी यहाँ जो शिक्षा अपने वैष्णवों को देते आए हैं ऐसे पंडित श्री लक्ष्मी नारायण दास जी हमारे मंच इस मंच पर आसीन हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर उपस्थित भक्त समुदाय को अपने सुमधुर प्रवचन से संबोधित करें।
कारण नष्ट भक्ति योग मिला जो रुद्र स्मरण करके पहले एक बार श्रीमद् महापुरुष का अवतार
अग्नि है शरीर में, वो अग्नि के तब आरती करता है।
और मिट्टी का अंश जो है उनको बैठने की जगह देना बैठने की। इसी प्रकार हमारे जो पंचभूति शरीर के द्वारा मैं सेवा कर सकता हूं, जितने ऊंचे बात है आप सुनिए बात को, कितने बड़े भाव है इसकी। गुरु गोस्वामी जी का जो वर्णन का कोई अंत नहीं है, इसका हर्ष कर दिए ऐसे ऐसे एक एक वर्णन रहता है। गुरु गोस्वामी जी जो चर्चा किया है बहुत ऊंचे ऊंचे चर्चा किया है, इसे हमारे विचार विषय है, विचार विषय गुरु गोस्वामी क्या दिया है। हमारी चर्चा आज की सभा में गुरु गोस्वामी का देव क्या है ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए। हमारे बड़े बड़े
कहीं नहीं गए। गोस्वामी गोस्वामी लोग का आचरण देखेंगे
वृंदावन में धाम में चढ़ता कौन पांच प्रकार साधन में धाम निष्ठ का भी भजन है इसकी हो जाता है। तो हमारी मुख्य सेवा का जरिया गोस्वामी के कारण हम करें क्या ना करें हम लोग तो बाहर से भी गोस्वामी का आश्रय क्या है उनको से आने की बात कोई कर कभी करें कितना सुंदर श्लोक बनाया आप जानते हैं सब इसलिए कहता हूँ देखते प्रिया सूर्य सारा कहीं पुरुष कभी तथा सारा तंत्र मनोरम संतमधुरम तथा पंत स्थिर मनुष्य मधुर मणि पंच मधु से मनो में कहा कि कोई ना विज्ञान आरती है आप लोग कितना प्रसन्न हुई इस श्लोक पर आप मुझे जाते थे कितना प्रभु था कि प्रभु भित्त के घर जाते थे शाम करने गए
वृंदावन के ब्रजवासी हैं, जो गौड़िया वैष्णव हैं,
वह उस रागानुगा भक्ति को भी उस रागानुगा भक्ति को भी रूप गोस्वामी के ही माध्यम से आज के वैष्णव जन जान पाए। तो जैसा पंडित जी ने कहा कि रूप गोस्वामी के बारे में कुछ भी कहना सागर को स्पर्श करने के समान है, उनके बारे में पूरा जीवन ही अगर निकल जाए तब भी श्री रूप गोस्वामी पाद का जो जीवन का इस वैष्णव जगत के लिए जो देन है, जो उनकी लीला है, जो उन्होंने ग्रंथों का लेखन करके वैष्णव जगत को मार्गदर्शन किया, फिर भी वह इस जीवन में समाप्त हो गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र जिन्होंने की महाराज श्री के अनुगत में उनके श्री चरणों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर अपने को महाराज श्री की विशेष कृपा का पात्र बनाया, ऐसे श्री भक्ति वेदांत तीर्थ जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वह श्री रूप गोस्वामी पाद के संबंध में अपने विचार प्रकट करें।
भेज करके जिन्होंने ब्रज वृंदावन को प्रकाशित कराया और श्री विक्रम को प्रकाशित किए, भक्ति ग्रंथ का प्रणयन किया, जो भक्ति रस के समुद्र को सबके सामने धर दिया, जो संसार में अदृश्य और विलुप्त प्राय, जो संसार जगत में आए हुए समस्त जीवों के मस्तिष्क में कहीं कर्म का स्रोत, कहीं ज्ञान का, कहीं योग का, कहीं तपस्या का, कहीं ध्यान का मार्ग अनुसंधान प्रिय हो करके चल रहे हैं, कहीं कर्म मार्ग में तो कहीं मुक्ति के मार्ग में, कहीं परमात्मा में लीन होने के लिए, परंतु भगवान की सेवा के लिए कितने जन समर्पित हैं, यह अत्यंत दुर्लभ था। जो किसी रूप गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करते हुए उन्होंने यह प्रकाशित कर दिया है विश्व जगत में। जो कि और भी एक चीज विशेष करके देखने को मिलता है, हमारे श्री ब्रह्मवाद गौरी वैष्णव समुदाय के अंदर में भी और वैष्णव आचार्यों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। कोई लक्ष्मी नारायण की उपासना में, तो कहीं श्री राम सीता की उपासना में, और कहीं कृष्ण की उपासना, यहाँ तक कि ऐश्वर्य मार्ग में। जगत के लोग ऐश्वर्य के अतिरिक्त माधुर्य को भी नहीं समझ पाते, माधुर्य को देख करके वे भट जाते हैं, अरे भगवान करके ऐसी लीला करेंगे, इसलिए बहुत दूर हट जाते हैं। परंतु पर ब्रह्म गुरु प्यारे श्री हरि, जो कि भक्तों के अधीन प्रेम की वर्षता को स्वीकार करके वे लीला विनोद करते हैं, आज उनकी लीलाओं को प्रकटित करने के लिए स्वयं भगवान स्वयं ही अवतरित हुए और भक्त वर्षता को दिखाया। उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद ने, जो कि समाज के लोग, संसार के लोग भक्ति मार्ग से दूर दूसरे मार्ग और भक्ति मार्ग में आ करके ऐश्वर्य मार्ग तक ही अपनाया, उससे आगे बढ़ नहीं पाए। बहुत से समुदाय के लोग जो कि कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा जी की उपासना करने में भी दिक्कत है और वे उनके भावों को ले नहीं पाते। दूसरी बात, और समुदाय के लोग जैसे देखा जाता है राधा कृष्ण की उपासना करें भी तो सखिया भाव से उपासना तक ही सीमित रख दिया, इससे आगे उनका साहस और उनका विचार इतना प्रगति और प्रसार नहीं हो पाया जो कि आगे के विचारों को भावों को व्यक्त करते। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथित दिखाया जो कि श्री ब्रह्मवाद गौरी वैष्णव समुदाय के अंतर्गत पूर्व आचार्य गण जितने भी हुए थे, श्री श्री श्रीमान मध्वाचार्य से लेकर के भी देखा जाए अधिकांश रूप में लोग नारायण की उपासना करते हैं। यदि कहीं देखा भी जाए तो उनके आदि में भी कृष्ण की उपासना हुई है, बाल गोपाल कृष्ण की, वह भी मर्यादा भाव से ऐश्वर्य भाव से, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। और जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, उनसे पहले श्री माधवेंद्र फुलपाती आए, तो भक्ति प्रेम कल्प वृक्ष के अंकुर स्वरूप श्री माधवेंद्र फुलपाती आए, तब से राघव भक्ति की बातें देखी जाती। और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, राधा भाव विमोचित हो करके उन्होंने कुछ भाव का आस्वादन किया, परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने और भी एक अभिनव चमत्कार का दिखला दी, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत गुण रहस्यमय भाव वृषभान नंदिनी राधा जी के अनुगत में, जो कि रागानुगा भक्ति से भी बढ़ करके श्री रूपानुगा भक्ति जो कि मंजरी भाव को प्रकाशित कर दिया। पहले के लोग सभी भाव से उपासना करते रहे, इससे आगे आप देख भी नहीं पाए, समझ नहीं पाए, परंतु हमारे गोस्वामी जी उन्होंने ये सभी भाव से भी बढ़ करके राधा जी के दास रूपी भाव को प्रकाशित कर दिया। सखित पद को नित्य नमस्कार करते हुए रसायते मम रसस्तु रसस्तु सत्तम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत करते हुए रूपानुवर हो करके उनके भावों को व्यक्त कर दिया कि हे वृषभानु नंदिनी राधे, जो आपके सखित पद को नित्य नमस्कार है, मुझे आपके का भी चाहिए। दशायते मम रसस्तु रसस्तु सप्तम। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो गौड़ीय आचार्य गण हुए हैं वे कृष्णानंद ने राधा जी की इस प्रकार किंकरी वन करके उनकी सेवा की भावना जो प्रार्थना की है उसमें मंजरी भाव को परिस्फुट कर दिया। और विशेष करके सभी गौड़ीय वैष्णवों ने श्री रूप गोस्वामी जी के चरण धूलि की प्रार्थना की और उनके विचारों में स्नात होकर के रूपानंद बनने का एक गौरव प्राप्त कर लिया जो कि विश्व जगत में यह दुर्लभ और कहीं भी यह प्रकाशित नहीं। जो कि वृषभानंद ने राधा जी की सेवा करते हुए उनके भाव में तद्भाव भावित चित जो कि संपूर्ण इच्छामयी भक्ति को छोड़ करके तत्त भाव इच्छामयी भाव में ही प्रकाशित हुए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसा में सिंधु में जो कि अमन का भक्ति में भी समूह इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी भक्ति को उन्होंने प्रकाशित करके दिखाया। संसार में जितने भी हैं सब अमन का भक्ति में सखी भाव में और द्वारका के भाव में कहीं सखिया भाव में वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे के विचार दिखा नहीं सकते। श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार मंजरी भाव को प्रकाशित करते हुए दिखाया। और भी हम लोग दुर्वर्ग से श्रवण करते हैं जो विश्वानंद श्री राधा जी की अंतरंग खास परिचारिका है और विशेष रूप से जहाँ पर सखियों का प्रवेश नहीं हो सकता है केवल मात्र श्री रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी जी वहीं पर प्रवेश करते हैं और राधा जी की अंतरंग सेवाएं करती है। तो इस प्रकार के जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी आज हम लोगों ने जो कि उनके एक विचारों में शिव उज्जल निर्मल से भी हम लोगों ने गुरु जी से श्रवण किया था सखिया और परकिया के विचार में जो कि संसार के लोग सखिया से बढ़कर के आगे परकिया से भावों को धारा में नहीं ला सके क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद ने दिखाया एक भावों की पराकाष्ठा। भावों की पराकाष्ठा परकिया में ही देखा जाता है न कि सखिया में। श्री गोस्वामी पाद ने श्री रूप गोस्वामी जी के अभिप्राय को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सखिया और परकिया में अंतर कहाँ है। सखिया में तीन दोष आता है जबकि परकिया में ये चीज नहीं है, इसलिए हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग ने इसी को अपनाया और उस भाव को दिखलाया जो कि सखिया में पहले पहले तो कुछ समय के लिए आकर्षण बना रहता है कुछ दिन पश्चात वो खत्म हो जाता है और एक दूसरों में दोष देखते देखते प्रेम की लघुता हो जाती है और तीसरे नंबर में सखिया में एक को अधिक बन करके पत्नी को अधिक पुरुष के अधिक बन करके रहना होता है। तो इसलिए प्रेम की साधनता नहीं है और व्यक्ति की साधनता नहीं है इसलिए प्रेम उतना परिस्फुट नहीं होता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने दिखाया कि परकिया में ये सब संभव नहीं है क्योंकि कभू मिले कभू ना मिले दैव घटन श्री चैतन्य चैतामृत में भी बोला है कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने यह दिखाया कि हजारों बाधाओं को अतिक्रम करके जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होता है वहाँ प्रेम की और प्रगाढ़ता परिस्फुट होती है। दूसरे नंबर में गोपियां कभी भी कृष्ण को दोष के नजर से दोष के दृष्टि से नहीं देखा। तीसरे नंबर में जबकि गोपियां अपना घर का खा करके अपना खालिया प्रीति कर रहते दारिण घर चंडीदास और विद्यापति के पदों में भी देखा जाता है जो कि गोपियां और राधा जी जो कि अपने प्रेम की साधनता में बनी रही और कृष्ण के साथ में जो प्रेम है और उस प्रेम में क्या है ये परकिया को दिखाया कि परकिया भाव में ये तीन दोष नहीं है जो कि सखिया में आ जाता है। इसलिए सखिया नीचे उतर जाता है परकिया भाव उन्नत रूप में और भी प्रकाशित हो जाता है। उसमें और भी एक चीज दिखाया गया जो कि वृत्ति कन्दकाओं तक को और उनमें भी परकिया दिखलाया गया क्यों इनमें भावों की प्रकाष्ठा है। विवाह विधि इत्यादि से लेकर के कोई भी विधि नियम इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा उनमें है, भावों की पराकाष्ठा किसी सीमित में नहीं होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। राग के पश्चात जब अनुराग आता है तो अनुराग का लक्षण होता है जबकि कृष्ण को नव नवायमान रूप में अनुभव करा दे, प्रतीक्षा नित्य नूतन रूप में अनुभव करा दे, तब उसको अनुराग कहा जाता है। और वह अनुराग जब सब सम्मिलित दशा और जावराश्रय वृत्ति को प्राप्त करे तब भाव होता है। सम्मिलित दशा जैसे महाप्रभु जी ने देखी गई और वृषभानंद जी राधा जी ने जो अपने भाव को अपने हृदय में अनुभव करती है बाहर व्यक्त नहीं कर सकती। और जावराश्रय वृत्ति भाव अपने द्वारा सीमित होता है, अपने द्वारा प्रमाणित होता है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। कोई साधक या सिद्ध उस भाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। भाव अपने आप आता है, जैसे महाप्रभु जी ने आया कि इतना भाव आता है कि उस समय महाप्रभु जी से भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, उस समय उन्माद की स्थिति बन जाती है। और भाव अपने चाहे जितना चाहे उतना ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि संत भाव उत्पत्ति भाव संधि भाव भाव सावल और भाव शांति, इस प्रकार भावे भावे लागे घोड़ा घोड़ी, भाव भावों की घोड़ा घोड़ी लगता है। और भी कहा है महाप्रभु देह एक वर्ष काहे मत गज पर जैसे बने रगवन। महाप्रभु शरीर कैसा है कि एक वर्ण है गन्ने का थी, और उसमें जो भावों की चमत्कारता है ये सभी भाव उन्मादित होकर के इस प्रकार आ जाते हैं जैसे कि एक मत्त हस्ती है पागल हाथी जैसे आ जाए और गन्ने के खेत में घुस जाए तो सारे खेत ही तोड़ फोड़ करके चूर चूर मार करके फेंक देते हैं। इस प्रकार जो कि भावों की स्थिति है भाव अपने द्वारा सीमित नहीं हो सकता, जो स्वयं ही सीमित होता है स्वयं ही प्रकाशित होता है और उसमें महाप्रभु जी इस प्रकार उन्मादित हो जाते हैं। ऐसे वृषभानंद जी राधा जी के भाव भी जो कि भाव महाभाव उससे भी बढ़कर के महाभाव की पराकाष्ठा है वृषभानंद जी राधा जी। और विरह की स्थिति में तो कहना ही क्या है, रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मोदन मादन दिपन वाद चित्र जल्प आदि भावों की व्याख्या करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ने ये अभिनव चमत्कारिता साहित्य में प्रदर्शित किया जो कि और किसी भी साहित्य में कहीं पर भी प्रकाशित नहीं है, न कि कहीं भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जितने भी पुराण साहित्य है वेद वैदिक सिद्धांत है शास्त्र है कहीं इतना रस का वर्णन इतना विवेचन इतनी व्याख्याएं नहीं हुई है, परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार व्याख्याएं दे करके श्री राधा जी के भावों को उद्घाटित किया और स्वयं उसी भाव में डूब कर विश्व जगत को दिखाया कि हे विश्व के रसिक ज्ञान हे भावु ज्ञान इस रस का पान करें और उसमें अवगाहन करें तो यही जीवन का सार है। मैं इन्हीं कथाओं के साथ
श्री भक्ति वेदांत तीर्थ जी महाराज ने अभी आप लोगों के सम्मुख जो गौड़िया संप्रदाय की विशिष्टता है राधा भाव, उस तत्व को आपके सामने रखा। वास्तव में अगर इस सत्य को कहा जाए, और अक्सर मैं इस सत्य को इस भारत की भूमि पर नहीं विदेश में भी कहता हूं कि राधा भाव को और राधा को कृष्ण के समीप पूजित करने के लिए महाप्रभु की ही प्रेरणा थी और महाप्रभु से पहले किसी की प्रेरणा ही नहीं थी। श्रीमन महाप्रभु के पहले
वहां से देखो बड़ी कृपा की
जो राधा तत्व है और राधा भाव है इतना विकसित और प्रचारित नहीं था। राधा को श्री कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित करकर राधा कृष्ण की पूजा अर्चना जो प्रारंभ कराई वो श्री चैतन्य महाप्रभु की ही देन। ब्रज लीला में भगवान कृष्ण के मन में तीन वासनाओं का उदय हुआ था। जब भगवान कृष्ण ब्रज लीला में थे तीन उनकी मन में इच्छा उत्पन्न हुई थी। पहले कि राधा के प्रेम की महिमा कैसी है, दूसरा जिस प्रेम के द्वारा श्रीमती राधा रानी मेरी अद्भुत माधुरी का आस्वादन करती हैं, वह मेरा माधुर्य कैसा है। तीसरा श्री राधा को जो मेरे माधुर्य का सुख प्राप्त होता है वह सुख कैसा है। तो भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं में इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही राधा कृष्ण के जुगल अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का इस कलयुग में अवतरण। यह कलयुग के जीव के ऊपर परम कल्याण का उनका यह अवतार था। इस राधा तत्व की महिमा ब्रज की जो लुप्त लीला स्थली उनको पुनः प्रकट करना, प्रेम तत्व क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, इस प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करना, हरिनाम का जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हरिनाम को वितरित करना, यह महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण। इसी क्रम में अब मैं श्री महाराज के एक और विशेष कृपा पात्र जिन्होंने कि महाराज श्री के श्री चरणों में रहकर शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की, ऐसे श्री श्याम सुंदर जी ब्रह्मचारी जी से आग्रह करूंगा कि वह यहाँ पर आकर श्री रूप गोस्वामी के विषय में उपस्थित भक्तजनों को अपना मार्गदर्शन प्रदान।
आज है कल है,
कल है आज तो हाजिरी है बस।
आज ही अंतिश आया है किसी भी द्वारा।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय चलाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय चलभक्ताय नमो नमः। सुधानं चांद्रीनां मधुरोन्मादजने दधाना राधादीपनयनसारे सुरभितं समन्तात् सन्तानमुदगम विषम संसार सरणिः परिणाम के कृष्णा करतु हरिलीलांद कुल चंद्रमा क्वि चंद्रिकाल मंद मुरली रव क्वरेन्द्रील क्वराटमी क्वी जीवन सौसती निधि मम सुतम क्वंत मूलोत्थात विधायनी भवतरो कृष्णान्या कृष्णाख्या कर्णानंदी
भवर के रूप में
वापस भेजने की चेष्टा करते हैं, जिसमें रस और भी उत्कर्ष को धारण करता है, जहां पर वाद प्रतिवाद में प्रश्न उत्तर में रस चरम सीमा को प्राप्त होता है, जहां पर वो बंगनाई उनको बाघ चात्री को सुन करके बाघ रिचि भी अर्थात उस बाघ को भी भवर में उलझ न करके, क्योंकि कृष्ण की बाघ भवर बहुत ही दुर्दांत पूर्ण तुंग रसावली, लेकिन वो बंगनाई वहां पर भी अपने को संभाल करके कृष्ण के साथ जैसे प्रतिवाद विवाद करती है, जिस तरह से उनको शब्दों का प्रयोग करती है, कोई भी भगवत विग्रह के जो उपासकाएं हैं स्वर्ज रस परक, वो कभी भी इस तरह से अपने भगवत विग्रहों के प्रति आचरण नहीं करते, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए कृष्ण जो समस्त अवतारों को भी अतिक्रमण करे, समस्त रसों का शिरोमणि होकर अखिल रसामृत मूर्ति, जितने भी भगवत विग्रह जैसे वो भी रस में है, लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण रसों को संपूर्ण रूप से संपूर्ण प्रकार से स्वादन करते हैं, जो अन्य विग्रहों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अभाव है, कहीं रूप का कहीं गुण का कहीं वेणु का कहीं लीला का, लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण रूप से विराजते, क्योंकि इनके परिकर जो है ये भी अस्फोट रूप से, क्योंकि परिकर वैशिष्ट्य न भगवत वैशिष्ट, राधिका जी के जो वैशिष्ट है उनका जो भाव है कृष्ण को ही अतिशय सेवा प्रदान करने की भाव को धारण करते, इसके रूप से पाल जी बोले राधा प्रयाण विदुर जयत, कृष्ण जितना जयजित हुए उतनी महिमा बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि राधा जी अतिशय हुए, राधिका जी उनको अत्यंत प्रियतमा है और एक दिन के अत्यंत प्रिय, यही कारण है कि कृष्ण संपूर्ण अवतारों को अतिक्रमण करके स्मूर्त होकर के नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखर के मौले होकर गिरा, इसलिए विधु विधुर जय विधु शब्द की व्याख्या में जो उसी बात करते हैं कि विधु तो समस्त भगवत अवतारों के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर करते नहीं हो सकता, क्योंकि विधु का जो अर्थ है विशेष विदनोति सर्व दुखम और विदधाति सर्व सुखम जस विधु, जो भगवत विग्रह संपूर्ण सुखों को दे सकते हो संपूर्ण दुखों को खंडन कर सकते हो, वही विदु पदवाच्य विदुनोति विदधाति खंडयति और ददाति विदधाति सब विदु, अगर रघुनाथ पाद जैसे कोई जन राधा कुंड के तट पर बैठे विलाप कर रहे हो, जबकि कृष्ण सामर्थ्य है दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दुखी लोग हैं जिनके दुख को कृष्ण भी दूर नहीं कर सकते, वो तभी कर सकते जब राधा प्रयाण विदु जयत, जगत में बहुत से लोग अभाव ग्रस्त हैं, किसी को साधारण जगत का ये नहीं है सो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुख के समुद्र में पड़े हुए, और कोई अभाव का दुख नहीं कि उनके घर में कोई नमक नहीं है सब्जी नहीं है चावल नहीं, ऐसा नहीं, उसके लिए तो परवाह ही नहीं करते, केवल एक दो ना मट्ठा पीने वाले और कभी सूखे चना को चबा कर रहने वाले, लेकिन वो भी कह रहे देवी सागर उधर है मान मंदिर राधिके मैं दुख के समुद्र में पड़ा, ये जो चिंता ये जो हृदय की जो व्याकुलता श्री रूप चिंता, रूप को समझ की कृपा है, नहीं तो जो हमारे जितने भी गुरु वर्ग है ये जो इतने रसिक है इतने भावुक है इतने तत्वज्ञ है सबके मूल में रूप को समझ, रूप जी पूरे हमारे गुरु वर्गों का सौंदर्य है, इनका माधुर्य इनका जीवन इनका प्राण है, यदि उनको हटा दिया जाए तो जितने हमारे अंदर में रस माधुर्य सौंदर्य है कुछ भी नहीं रह पाए, क्योंकि वो जिस प्रकार से राधा जी के भावों को निरूपण करते जिस प्रकार से हमारे हृदय को संदर्भ करते हैं, रघुनाथ पाद जी करते हैं उनकी चिंता के द्वारा कोई कैसे चिंतन कर रहे उसमें भावित होकर के मैं दुख के समुद्र में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से निकलने का कोई बीच में और छोड़ने कृष्ण को भेज दे, क्योंकि कृष्ण तो बहुत बड़े नाविक है, पता नहीं कितने जीवों को संसार सागर से पार लगा रहे, रघुनाथ पादी का दिन कृष्ण की मेरे को उद्धार नहीं कर सकते, कृपा की रास से नहीं बल्कि में प्राणी कर देगा जब अरुण बकारी नाम बकारी नाम उनमें जो राधिका जी का अनुगत में जो भजन करते हैं डिक्शनरी नहीं खींच सकते, और उनका जो रूप गोस्वामी जी बातों का मनन करते हैं उनका कोई तुलना कोई उदाहरण नहीं, क्योंकि राधिका जी कहीं ऋणी नहीं है, कृष्ण इनके चरणों में ऋणी हो जाते हैं। राधिका जी इनको कहते हैं कि आपका प्रेम हमने देख लिया, आप भले जितना कहो कि मैं आपके बंदा नहीं चुका सकता, आपका प्रेम बहुत है, ना पाने संजुरा हूं, बस आप क्षमा कर दो और मैं चेष्टा करूंगा तरह तरह से, आप अनुनय भी नहीं करके केवल एक उलझाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा कि आपका प्रेम ऐसा है कि आप चार घंटा भी किसी प्रेमी के प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आप सुबह में यहां से गए मथुरा और शाम को एक दिन ही मथुरा का रास्ता, शाम या दूसरे दिन सुबह में पूजा से मिलेंगे, और तुरंत उनको बोले सुंदरी जी आपका परिचय किया, आपका ये प्रेम की स्थिति है, ऐसे आप प्रेमी हैं जो प्रेम की प्रतीक्षा नहीं करते। और हम ये कहेंगे जन्म जन्म तक कितने समय तक प्रतीक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में आपको जैसा लगे कर, लेकिन हम हमारे प्रार्थना से केवल कृष्ण हैं, तब हमारे क्या प्रेम से बंधन हो जाए, आप हमारे क्या दे सकते हैं। जहां पर कृष्ण पराजित हो जाते हैं लेकिन राधिका जी रूप जी के सानिध्य में पराजित होते हैं, रूप गोस्वामी रूप मंदिर पर जिस तरह से उनके भावों की जगत व्यक्ति किए अपने आप का स्मोर्ण है, नहीं राधा जी की हृदय का भाव को कौन बोलेगा, राधिका जी नहीं बोलते, क्योंकि कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है वो अंदर में छुपा देती, ये बोलने का भी सही नहीं, क्योंकि दीप सिखा के समान है, राधिका जी बोले कि मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ तो ये प्रेम लगता हूँ कहते, कृष्ण भी नहीं बोलते कि मैं इतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये प्रेम कुछ ऐसा है जो वाणी का विषय नहीं, लेकिन जगत जीव उसको कैसे अनुभव करेंगे, कैसे उनको थोड़े कंसेप्शन धारणा बनेगी, तो रूप गोस्वामी पाल जी महाप्रभु जी की कृपा से तो बोले नमो महाबदन्नाय, महाभाव ने कृपा करके दिए और तब उनके भावों को जिस तरह रस की विवेचना कर रहे थे, रसों की विवेचना बिना अलंकार बिना उत्प्रेक्षा बिना ध्वनि और बिना उपमा के द्वारा प्रकाशित होना उतना सौंदर्य नहीं हो सकता, इसे रूप गोस्वामी जी के हर श्लोकों में जैसा उन्होंने काव्यों का प्रयोग, क्योंकि रायरमन पाल जी बोले, रायरमन प्रभु बोले कि जब तक ऐसे रसात्मक श्लोकों की रचना न की जाए तब तक रस का तो प्रचार जगत में नहीं हो सकता, और इसलिए रायरमन प्रभु जी को साधारण नहीं, जो महाप्रभु जी के साथ साध साधन तत्व का जहां पर निर्णय दे रहे हैं उद्भट विद्वान, किंतु रूप गोस्वामी पाल जी कवित्व को जब देखे उन्होंने बोला जरा पूर्व राग का वर्णन करो तो कैसे आपने किया है, एक श्रुतमेव लोमपति मति कृष्णेति नामाचरण सांदो उन्माद परस्पर प्रेम सबंती कला ऐसा घना तुति लग्न पटे विजनाथ कष्टम धिक पुरुष त्रयरति पुण्य मान्य वृत्ति से। राजा जो इतने बड़े उद्भाट विद्वान सुन करके उनका हृदय जल से द्रवित भूत हो गया, शरीर शरीर रोमांच आ गया, महापुरुष को देख रहे हैं अब उन्हें ये नहीं भूल रहे आपकी कृपा, क्योंकि इनके शब्दों से मुझे पता चल रहा है कि आप बिल्कुल चाहे जैसे चाहे बुलवा सकते, नहीं तो ऐसे भावों को कौन बोल सकते। पूर्व राग का वर्णन कर रहे जहां पर राधिका जी का कृष्ण के साथ अभी कोई दर्शन नहीं कोई संभाषण नहीं कोई मिलन नहीं, उस अवस्था को पूर्व राग करते हैं, और उस अवस्था में कह रहे हैं कि सत्रुन तमेव लोमपति मति कृष्ण जी नामा, कृष्ण ये दो अच्छा है केवल कर्म में प्रविष्ट होने मात्र से मेरी बुद्धि को विरुद्ध कर, मैं देखा नहीं कौन है किसका नाम कृष्ण मैं नहीं जानता, लेकिन नाम तो शक्ति भगवत नाम है, कृष्ण नाम इस बात पर विचार नहीं करता कि मुझे जानता है कि नहीं जानता, नाम का अपना स्वाभाविक गुण स्वाभाविक धर्म है, अग्निवत अग्नि को आप जान करके स्पर्श करो या अनजान में करो, अग्नि को छुएंगे तो आपको राधिका आपको जलन प्रदान करेगा आपसे जलाए, ऐसे कृष्ण नाम को राधिका जी बोलती मैं नहीं जानती मैंने कभी सुना नहीं कौन है, लेकिन मेरी मति को विलुप्त कर दे मेरी बुद्धि मेरे पास नहीं है, मेरा धैर्य सब कौन है नाम कुंडे टाण विधि रति में विधु नदे कुंडा बलि लगे विलाप कर रहे हैं वो आनंद पुनर कौन इस नाम को मेरे को सुनाए चनी दास के पद विलाप मत करो, मेरे हाथों को मत पकड़ो, मुझे जाने वो कैसा है क्या है वो मुझे याद नहीं पड़ता। ये तो बंसी कैसी करामत है, मैं तो केवल ध्वनि सुन के जा रही हूँ, बजाने वाला भैया है मैं कौन है वो तो उसका काम, लेकिन बंसी की ध्वनि ऐसी है जो स्थिर नहीं कर रही, दर्शन नहीं कुछ नहीं, केवल संगीत सुन करके दौड़ रहे हैं। जगत में ऐसा कोई प्रेम को धारण होगा बिना जाने सुने दौड़ो? नहीं होता। सत्यम जनस्पति राधिका जी बोले लोग को शामिल का भाव, तुम जो कह रहे सत्य है, किसी अनजान के पीछे हूँ संगीत सुन करके दौड़ना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा खुद बड़ा निर्मल हम लोग भागेंगे तो लोग उनको क्या क्या बोलेंगे। उधर जी बोले दिए के माँ स्त्रियों ब्रह्मचरी लौकिक दृष्टि से कहाँ है और कहाँ कृष्ण, क्या क्या शब्द क्या क्या सुनना पड़ता है ये हम जानते हैं। सत्यम कुलम सत्य यदि बात सत्य है कि कृष्ण जो बंसी बजा रहे जिसका नाम कृष्ण जो बंसी बजा रहे कौन है वो भी निष्करुण है जैसे बोले में विश्वास करते, लेकिन तत्सर्वम विस्मार यामी झटति श्रोत्र अतीत जायते चेत उन्माद मुकुंद मंजु मुरली निस्मान राग। कृष्ण की मंजु मुरली के जो राग की गति है, जो आरोहण अवरोहण है, मूर्छना आदि से युक्त जो उनका स्वर है, पता नहीं क्या है तो जड़ तो चेतना नहीं है, लेकिन कम पसंद का राघवन सुन रहे हैं एक एक विषय पर, नाम के ऊपर, बंसी के ऊपर, उनके रूप के ऊपर, उनके गति के ऊपर, उनके अवलोकन विलोकन, उनके हंसने के ऊपर, प्रत्येक एक एक अंग प्रत्यंग कर जैसा लोगों को आज रस का विवेचना कर रहे हैं, अखिल रसा मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं, याद करके विश्वास उनके तदाद है, उनके हृदय के प्रत्येक भावों को राधिका जी दे न दे ले लेते हैं, लेने के बाद असंतुष्ट नहीं होती, बहुत खुश होती है। महाप्रभु जी के जब भावों को उन्हें चुराया, जब अवमान है महाप्रभु जी हमको डरे तू हमारे अंदर से कैसे घुस गए, जब उनकी कृपा उनके जन अंदर तक से हृदय के भावों को छीन लेते हैं, कह रहे हैं क्या है जड़ है लेकिन कम उत्पन्न शास्त्र नहीं है, लोगों सामने का वर्णन है पद्या पद्या देखेंगे उनमें और कई जगह पर कम संपाद शास्त्र नहीं लेकिन शरीर को काटता है, ताप नहीं है कोई गर्मी नहीं है शीतल है लेकिन फिर भी उष्णता को धारण करता है, कोबा आयम हुई है। उसी समय एक चित्रपट का दर्शन किया, चित्रा शक्ति दिखाया कृष्ण गुरुगोस्वामी बोलते चित्र क्या महेंद्र मणि मंडली मदन की देह, नीलमणि इंद्रमणि के जितना भी मेघ आदि के सौंदर्य है, नीले वर्ण के जितना भी जगत में सौंदर्य है सबको पराजित कर। इस प्रकार रायमंड और पूछते और कहो, इस प्रकार वहां पर जिस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे उसी प्रकार राधिका जी का सौंदर्य का वर्णन करें, जो पूरे विश्व में उन्होंने जो दिया कृपा करके जीव साधक जिसको श्रवण करके सुन करके स्वाभाविक उस ओर अग्रसर हो सकता है। विहार श्रुति मना मनो कणिंग इत्यादि विलोचन चकोर शरद चंद मंदा प्रभा गुरु अमर सदस्य मृदुता कल्याणी किम्बा बड़े बड़े कवि हुए, लेकिन रूप गोस्वामी जी काव्यों के आगे चाहे कोई उपमा वाले हुए चाहे कोई अलंकार के कवि हुए अलग अलग कवि अलग अलग विषयों पर हुए, लेकिन रूप गोस्वामी का तो संपूर्ण विषयों का लिख देता है। उपमा कालिदास से भारव्याख्य गौरव है पद लालित्य, लेकिन रूपे संति त्रयोग हुआ जितने भी काव्यों का चमत्कार है गुण है रसासार सुरारो सुरारी संसार सर और धारा धरे धरा धर दीर्घराज दादी ओदम राजा धुरंधर रसा महा आसार सर लास सादाद सा बना राम मारदा आसमान तमा सम करवा के सदा लोग का कलो दाय मिलाव का कबला दे तुकान का कनुता भी का, मतलब एक एक अलग अलग छंदों का काव्य और एक ही काव्य में अनंत छंदों का समावेश, कद खंड ग्रंथ से खंड ग्रंथ से खंड सुनल तो किन में से तक तक गंड द्विजपटि कुंड स्मरस रस कुंड प्रकट विचंड स्थित गंड सुरंग सुंगा कृति मुझे डंडा प्रणय करंदा अतकल चंडा स्मजन भांति जनित विदांति। एक ही श्लोक में कई काव्यों का मिश्र दो लाइन के बाद काव्य को अलंकार के छंद को बदल इस प्रकार पंडित परिसर में मल्ली उनके काव्यों को देख करके सुन करके सहज में भक्ति हो जाती है। कुछ नजर इसको पड़ेगा तो इन आंखों से अश्रु आएगा, हृदय में रोमांच हो जाएगा, गदगद हो जाएगा और लगेगा कि बस संसार में और कुछ नहीं। और वास्तव में भगवत किसी काव्य को छोड़कर भी जगत में आस्वादन में कोई वस्तु नहीं। अगर कोई आस्वादनीय वस्तु है तो केवल वही रूप गोस्वामी का काव्य है। उनके जो विवेचना है भक्ति का सौंदर्य हमारे लिए स्वादनीय
के बाद में चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रस की शोभा को देने के लिए आए। उन्नत उज्जवल जो भाव गोपियों का है ये जीवों को नहीं दिया जा सकता। वो नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्नत उज्जवल स्वभक्ति स्वमान्य राधिका राधिका जी के जो भाव है उसका तो आस्वादन करेंगे और आस्वादन किया, वो नहीं दिया जा सकता। उसकी शोभा जिस प्रकार से भक्ति कल्पलता है, भक्ति को एक कल्पलता माने तो राधा जी कल्पलता है और सखियां उसके पल्लव और पुष्प हैं और मंजरियां उसकी और शोभा को बढ़ाती हैं। हल्के शीतल मंद वायु के छकोरे से जब मंजरियां हिलती हैं तो लता की शोभा और बढ़ जाती है। इसलिए राधिका जी की भावों की शोभा ये मंजरियां हैं। इन मंजरियों का भाव देने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु भाव है। यही चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी ने इसकी स्थापना की है जिसके विषय में विद्वानों ने सबोला कहा है और आगे भी कहेंगे। आप लोग कृपया बताए यही बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त।